أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، پیارے دوستوں اور ہمارے اس کاریکرم کے سبھی پیارے درشکوں، ہماری ایشور سے یہی آشا ہے کہ آپ سبھی اپنے جیون میں سکھی اور سوستھ ہوں اور ایشور ہمارے اور آپ کے لوک اور پرلوک کو بہتر بنائے۔ میں آپ سبھی کی خدمت میں اپنا پیار بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس کاریکرم میں احکام سے سمبندھت مسئلوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پریتن ہے کہ وہ احکام جن کی ہم کو اپنے جیون میں آوشیکتا ہوتی ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں اور ان سے سمبندھت مسئلوں کو آپ کے سامنے وسترت روپ سے بیان کیا جائے۔ ہم نے اپنے پچھلے کچھ کاریکرم سے جس بات چیت کو آرمبھ کیا تھا وہ نماز جماعت سے سمبندھت احکام تھے۔ آج اسی کڑی کی بات چیت اپنے انتم چرنوں میں پہنچے گی انشاءاللہ، اور ہم آج اپنی اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے احکام جماعت سے سمبندھت مسئلوں کو آج کے کاریکرم میں سماپت کر دیں گے۔ آج ہم جس بارے میں بات چیت کریں گے اس کو اگر ہم شیرشک کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی معموم یعنی نماز پڑھنے والا بھولے سے امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلا جائے یا سجدے سے سر اٹھا لے تو اس کے بارے میں کیا حکم اور کیا مسائل پیش آئیں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے کسی کاریکرم میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک نمازی کے لیے جماعت میں واجب یہ ہے کہ وہ کاریہ وہ اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں اس میں اس کو امام کم سے کم امام کے ساتھ یا امام سے تھوڑی بعد میں انجام دینا ہوگا، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ امام سے پہلے کسی فعل کو کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کر جائے مثلا رکوع میں جان بوجھ کر امام سے پہلے چلا جائے یا سجدے میں جان بوجھ کر امام سے پہلے چلا جائے تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے انوسار اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب جان بوجھ کے جب کرتا ہے انسان تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اس کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی ویکتی کوئی معموم بھولے سے امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے تو کیا ہوگا، یعنی جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ امام رکوع میں جاتا معموم رکوع میں چلا گیا ہے تو اب وہ کیا کرے۔ تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی بھولے سے امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ دوبارہ رکوع سے اٹھے اور امام کے ساتھ دوبارہ رکوع میں جائے۔ اب تو یہ ایک استھتی ہو گئی کہ بھولے سے رکوع میں چلا گیا امام سے پہلے۔ اب اگر کوئی رکوع میں ہے، امام بھی رکوع میں ہے معموم بھی رکوع میں ہے، اب اس سے پہلے کہ امام رکوع سے اٹھتا یہ معموم بھولے سے امام سے پہلے رکوع میں امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا ہے تو اب کیا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی کوئی نمازی بھولے سے امام سے پہلے رکوع سے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے تو اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ دوبارہ رکوع میں چلا جائے اور امام کے ساتھ دوبارہ رکوع سے اٹھے۔ اب ان دونوں سچویشن میں، ان دونوں استھتیوں میں، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ رکوع ایک رکن ہے اور رکن کی کمی اور زیادتی یہ دونوں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اب یہ دونوں استھتیاں جہاں پر ایک مرتبہ امام سے پہلے رکوع میں گیا یا امام سے پہلے رکوع سر اٹھا لیا تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جائے اور امام کے ساتھ اس کار کو انجام دے۔ تو یہاں پر جو رکن کی زیادتی ہو رہی ہے यानी जो दो रुकू हुए जा रहे हैं, तो क्या इन दो रुकू के हो जाने के कारण हमारी नमाज़ बातिल होगी? तो हमारे मुज्तहिदीन कहते हैं नहीं, यहाँ पर रुकन की ज़्यादती नमाज के बातिल होने का कारण नहीं बनेगी और उसकी नमाज़ सही रहेगी। उसके बाद जो मसला पेश आता है, तो ये तो रुकू की बात हो गई, अगर रुकू में ऐसा कर दिया है तो क्या करेगा? अब अगर कोई इंसान भूले से इमाम से पहले सजदे में चला जाए तो क्या करेगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा वही बात कहते हैं जो रुकू के संबंध में कहा गई थी, वो ये है कि वो उठे, उठने के बाद इमाम के साथ दोबारा रुकू में जाए, और अगर ऐसे ही कर दे, सजदे में इमाम के साथ गया हुआ था, अब इमाम इससे पहले कि सजदे से सर को उठाता, इसने भूले से अपने सर को सजदे से उठा दिया, तो यहाँ पर भी हमारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि इसको चाहिए कि दोबारा वो सजदे में पलट जाए और इमाम के साथ अपने सर को सजदे से उठाए। तो ये वो स्थितियाँ हुई कि जब इंसान भूले से रुकू और सजदे में इमाम से पहले जा रहा था या इमाम से पहले सर उठा रहा था। तो यहाँ पर हमारे सारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो दोबारा उसी स्थिति में पलट जाए जिस स्थिति में इमाम था, उसके साथ अंजाम दे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कार्य न करे, यानी क्या, मसलन कोई व्यक्ति इमाम से पहले रुकू में चला गया, अब हमारे फुकहा हमारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि उसको चाहिए कि उठे और उठने के बाद इमाम के साथ दोबारा रुकू में जाए, अब अगर ये रुकू से ना उठे और रुकू ही में रह जाए तो क्या होगा? तो हमारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रुकू में इमाम से पहले चला जाए, जैसे अगर रुकू में चला जाए और वो रुकू से ना उठे और तब तक रुकू में रहे यहाँ तक कि इमाम भी रुकू में आके उससे मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो हमारे फुकहा यह कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उसकी नमाज बातिल नहीं है, लेकिन उसके लिए एहतियात मुस्तहब ये है कि वो अपनी नमाज का इयादा करे, यानी दोबारा पढ़े। यानी क्या मतलब? यानी अगर वो रह जाता है उसी स्थिति में तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज सही है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि जब वो नमाज समाप्त कर ले तो उसके बाद दोबारा उसी नमाज को एहतियातन पढ़े। मसलन अगर जोहर की नमाज थी और जोहर की नमाज में किसी व्यक्ति ने ये कार्य किया कि वो इमाम से पहले रुकू में चला गया और रुकू से उठा नहीं कि दोबारा इमाम के साथ रुकू में जाए, यहाँ तक कि इमाम भी उसके साथ आ गया, तो मुज्तहिदीन के फतवे के मुताबिक, मुज्तहिदीन के फतवे के अनुसार इसकी नमाज सही है, लेकिन एहतियातन एहतियात मुस्तहब ये है कि इसको अपनी वो जुहर की नमाज जो उसने जमा से पढ़ ली है उसको दोबारा पढ़ना होगा, ये एहतियात मुस्तहब है। उसके बाद कुछ मसले हैं जिनकी इस संबंध में ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हमने जैसे आपको बताया कि इंसान भूले से इमाम से पहले रुकू में चला जाए तो क्या होगा? तो हमारे मुज्तहिदीन ने कहा उसको चाहिए पलट के आए और इमाम के साथ दोबारा रुकू में जाए। अब यहाँ पर मसला ये पेश आता है कि एक व्यक्ति भूले से इमाम से पहले रुकू में चला गया, यानी उसकी स्थिति क्या थी, जिस समय इमाम को जाना चाहिए था उस समय जाना था इसको, लेकिन भूले से इमाम से पहले रुकू में चला गया। अब इसने अपना सर उठाया फ़ौरन रुकू से, इसलिए ताकि इमाम के साथ रुकू में जाए, और जब वो सर उठा लिया उसके बाद, इससे पहले कि वो दोबारा रुकू तक झुके, इमाम ने अपना सर रुकू से उठा लिया। क्या मतलब, मैं फिर से आपके सामने बयान कर दूं, यानी उसने रुकू किया था इमाम से पहले, अब वो उठता है रुकू से ताकि इमाम के साथ रुकू करे, ये उठता है और इससे पहले कि दोबारा इमाम के साथ रुकू में जाए, इमाम अपना सर रुकू से उठा लेता है, तो अब क्या होगा इसकी नमाज का? तो यहाँ पर हमारे मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि अगर उसके रुकू में पहुँचने से पहले इमाम ने अपने सर को रुकू से उठा लिया था तो इसकी नमाज बातिल है, इसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। उसके बाद जो मसला आता है, ये तो रुकू का मसला हो गया, उसके बाद जो मसला आता है सजदे का, कि अगर कोई मुसलमान, अगर कोई नमाजी भूले से इमाम से पहले सजदे से सर उठा ले, उस वो इमाम के साथ सजदे में जाना था, उसने सर सजदे में रख रखा था और सजदे से इमाम से पहले उठा लिया, अब इससे पहले कि दोबारा वो सजदे में जाए और सर इमाम के साथ उठाए, इमाम ने अपना सर उठा लिया सजदे से, यानी दोबारा सजदे में पहुंचने से पहले पहले इमाम सजदे से उठ चुका था, तो अब क्या होगा? तो हमारे मुज्तहिदीन कहते हैं कि यहाँ पर उसकी नमाज सही है और इसकी नमाज के सही होने में कोई मुश्किल, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यही स्थिति, यही सिचुएशन दोनों सजदों में पेश आ जाए, यानी क्या मतलब, यानी दोनों सजदे में ऐसा हो कि इमाम से पहले सजदे से सर उठा ले और दोबारा सजदे में इससे पहले कि सजदे में पहुँचे इमाम सर उठा चुका हो। तो अगर दोनों सजदे में ऐसा होता है तो उसकी नमाज़ बातिल है, उसको नमाज़ अपनी दोबारा पढ़नी होगी। उसके बाद एक मसला जो पेश आता है वो ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि मामूम जो है, अगर इमाम की तीसरी या चौथी रकत है तो मामूम और मामूम की पहली या दूसरी रकत है तो उसके ऊपर वाजिब ये है कि हम्द और सूरे को पढ़े। यहाँ पर अगर स्थिति इस प्रकार पेश आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति नमाज में पहुँचा और उसको उसने इक्तदा की, नियत की, नमाज जमात में शामिल हो गया, अब वो ये समझ रहा था कि इमाम जो नमाज़ पढ़ रहा है वो इमाम की पहली या दूसरी रकत है, और ये समझते हुए उसने अपना अलहम्द और सूरा नहीं पढ़ा, तो अगर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति पेश आती है और उस व्यक्ति को, उस नमाजी को रुकू के बाद ये पता चलता है कि इमाम की ये नमाज़ तीसरी या चौथी थी और उसने हम्द और सूरा नहीं पढ़ा, तो उसकी नमाज़ सही होने में कोई आपत्ति, कोई इश्काल नहीं, उसकी नमाज़ सही है। लेकिन अगर ये चीज़ उसको रुकू से पहले समझ में आ जाती है, यानी रुकू से पहले उसको पता चल गया कि नहीं, ये नमाज़ जो इमाम पढ़ रहा है उसकी ये तीसरी या चौथी रकात है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसके ऊपर वाजिब है कि वो हम्द और सूरा पढ़े। अगर दोनों पढ़ने का समय नहीं है तो उसके लिए वाजिब यह है कम से कम हम्द वो अवश्य पढ़े। तो ये वो मसाइल थे जो जमात में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जमात से संबंधित जो चीज़ें हो सकती हैं वो हमने आपको जैसे बताया था कि जिस समय जमात खड़ी हो रही है उस समय इमाम जमात और मामूमिन की जो जगह है उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर सतह पर खड़े हों, एक जैसी ज़मीन हो, और अगर इमाम की जगह मामूमिन की जगह से ऊंची है तो नमाज़ सही नहीं होगी। लेकिन अगर इसके उलट हो जाए, यानी क्या मतलब, यानी इमाम नीचे हो और मामूमिन की जगह ऊंची हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर ये ऊंचाई सामान्य हो, यानी एक विशेष स्थान तक हो, यानी जिसका जैसा आम तौर से होता है उतनी अगर ऊंचाई है तो इस ऊंचाई से नमाज जमात पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, नमाज जमात सही होगी। एक मिसाल दे दूँ ताकि बात स्पष्ट हो जाए। जैसे जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मस्जिद ऐसी है जिसमें नीचे सहन है, ऊपर एक छत टाइप की बनी हुई जिसके ऊपर जमात होती है, अब अगर इमाम उस नीचे सहन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है और कुछ सफ़ें उस छत के ऊपर लगी हुई हैं तो इन सफ़ों की नमाज जमात सही होने में कोई आपत्ति नहीं है और इसकी नमाज जमात सही होगी। लेकिन अगर यही सफ़ें एक के बाद एक ऊपर ऊपर पहुँचते हुए कई मंजिला हो जाएँ तो यहाँ पर नमाज जमात उनकी सही नहीं होगी, बल्कि उनकी नमाज जमात में आपत्ति और इश्काल पेश आएगा। उसके बाद एक अहकाम जमात में जो हमको ध्यान रखने वाली थी, हमने ये कहा था कि जिस समय जमात खड़ी हो रही है उस समय जमात की सफ़ों के बीच में दूरी नहीं होना चाहिए, एक कदम से ज़्यादा अगर दूरी है तो वो जमात नहीं मानी जाएगी, वो उस दूरी पर जो लोग हैं उनकी जमात नहीं मानी जाएगी। अब अगर जमात इस प्रकार खड़ी हो कि सफ़ में एक बच्चा खड़ा हो, बीच में ऐसा बच्चा खड़ा हुआ है जो बालिग नहीं हुआ है अभी लेकिन मुमय्यस है, अब मुमय्यस किस चीज़ को कहते हैं? मुमय्यस उस बच्चे को कहा जाता है जिसको अच्छाई और बुराई का पता हो, जानता हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अगर एक बच्चा एक सफ़ के बीच में खड़ा है और उस बच्चे के कारण एक कदम से ज़्यादा का फासला हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ स्थितियाँ पेश आ सकती हैं कि जो मामूम उस बच्चे के बाद खड़ा हुआ है उसको इस बात का पता है कि ये जो बच्चा खड़ा हुआ उसकी नमाज़ सही है, अगर इस बात का पता है तो वो इक्तदा कर सकता है, उसकी जमात सही होगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है उसको इस बात का विश्वास है ये जो बच्चा खड़ा हुआ है इसकी नमाज़ बातिल है, अगर उसको इस बात का विश्वास है तो हमारे फुकहा कहते हैं वो इक्तदा नहीं कर सकता है, जमात में उसके पीछे या उसके बगल में शामिल नहीं हो सकता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसको शक है, उसको संदेह है कि पता नहीं इस बच्चे की नमाज़ सही है या नहीं सही है, तो हमारे फुकहा हमारे मुज्तहदीन ये कहते हैं कि अगर इंसान को शक और संदेह है तो वो उसके पीछे इक्तदा कर सकता है, उसकी जमात सही होगी। उसके बाद जो मसले पेश आते हैं कि जमात में ये है कि जब इमाम जमात तकबीरतुल इहराम कह ले तो उसके बाद पहली सफ़ वाले उसके बाद की बात की सफ़ों वाले तकबीरतुल इहराम कहें, अब अगर इमाम जमात ने तकबीर कह ली है और पहली सफ़ के जो लोग हैं वो तकबीर कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो उसके पीछे जो लोग हैं अगर वो तकबीर कह देते हैं तो ऐसी तकबीर में कोई आपत्ति नहीं, उनकी जमात से नमाज मान ली जाएगी, जमात में वो शामिल माने जाएंगे। उसके बाद एक मसला जो पेश आता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि इमाम जमात खड़ा हुआ है, जमात पढ़ा रहा है, और एक ऐसी स्थिति पेश आ गई कि जो पहली सफ़ में जितने भी लोग खड़े थे सब के सब की नमाज समाप्त हो गई, मतलब मान लीजिए सब के सब नमाज कसर वाले थे, इमाम जमात की नमाज़ पूरी थी, 2 रकात ख़त्म की, सबकी नमाज समाप्त हो गई, और उसके पीछे जो लोग थे उनकी नमाज 4 रकात ही थी, उनकी नमाज अभी समाप्त नहीं हुई, या पहली सफ़ के तमाम लोग एक साथ फुरादा की नियत कर लें बीच से, तो अगर जो पीछे की सफ़ें खड़ी हुई हैं उनके बीच में और उस इमाम जमात के बीच एक लंबे कदम की दूरी ना हो तो इनकी जमात से नमाज सही है, अगर एक लंबे कदम से ज़्यादा की दूरी होती है तो इन सब की नमाज अपने आप फुरादा हो जाएगी, और फुरादा की नियत से उनको नमाज समाप्त करनी होगी और उनकी नमाज सही है। तो ये वो चीज़ें थी जो अहकाम जमात से संबंधित थी। जैसे कि हमारी ये रीत रही है कि अंत में हम हमेशा कुछ मुस्तहब और मकरूह चीज़ों के बारे में बयान करते हैं, यहाँ पर भी हम जल्दी जल्दी 2-3 बातें आपके सामने पेश करेंगे और अपनी अध्याय को यहीं पर बंद कर देंगे। सबसे पहली चीज़ जमात में मुस्तहब है वो ये है कि इमाम जमात जो है वो सफ़ों के बीच में खड़ा हो, और पहली सफ़ में वो लोग खड़े हों जो ज्ञानी हैं, मुत्तकी हैं और परहेज़गार किस्म के लोग हैं, इस प्रकार के लोग पहली सफ़ों में खड़े हों। और एक चीज़ और मुस्तहब है कि नमाज की तमाम सफ़ें व्यवस्थित हों, यानी एक के बाद एक बराबर खड़े हों, लोगों के बीच में फासला ना हो। और तीसरी मुस्तहब चीज़ यह कि जिस समय कदगामद सलात कहा जाए तमाम के तमाम लोग उठ खड़े हों और नमाज जमात में शामिल हो जाएं, ये मुस्तहब है। कुछ चीज़ें मकरूह हैं, जैसे कि अगर नमाज जमात की सफ़ों में कोई जगह खाली बचती है तो इंसान को नहीं चाहिए कि वह अकेला पीछे या किसी और तरफ खड़ा हो, और ये भी मकरूह है कि जो लोग इमाम के पीछे खड़े हुए हैं वो नमाज के ज़िक्र को इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ें कि वो इमाम को सुनाई दे। तो ये वो चीज़ें थीं जो अहकाम जमात से संबंधित थी, हमने आपके सामने बयान किया। इसके अलावा भी और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं जो हमारे सामने पेश आएँ या तौज़ील मसाइलें मिल जाएँ, लेकिन हमने अपना प्रयत्न ये किया है कि वो मसले जो हमारे आम जीवन में अधिकतर पेश आते हैं उनको आपके सामने बयान किए जाएँ। इसके अलावा भी अगर कोई और मसले आपके सामने पेश आते हैं तो उसके लिए या तौज़ील मसाइल की तरफ मुराजा करें या हमसे सवाल पूछें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए हम आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।